ओम शांति, ओम शांति। अभी हम दो मिनट परमपिता परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो हमारे पिता हैं, तो हम दो मिनट गीत चलेगा और गीत के जो शब्द होंगे उन शब्दों के साथ साथ अपने मन को आप स्थिर करते जाएंगे और जो मन में संकल्प उठ रहे हैं उन विचारों को गीतों के साथ चेंज करते जाएंगे और उसी के प्रकंपन पूरे हॉल में फैलेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर उसकी अनुभूति होगी और उसके पश्चात बाहर उसको हम अनुभव करेंगे। तो जैसे जैसे गीत के बोल होंगे उसी गीत के शब्दों के साथ आप अपने मन को स्थिर करके अनुभव करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है, शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झर झर बादल दिल से दुआएं लुटाता है, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहां, सुंदर रचता अपना जहां। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
हमारे बीच हमारे जो मंच की शोभा है सभी पहुंच चुके हैं, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बीके नथमल भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर जुरिस्ट विंग, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीके नायक जी, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, हम करतल ध्वनि से का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर पीताम्बर आचार्य, ऑनरेबल एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कटक, हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रदर आर के सिवाल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, आप भी हमारे बीच आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर गीता, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वीमेन लॉयर्स एसोसिएशन दिल्ली। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी इंदौर, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग। हमारे बीच हम सभी के प्रेरणा स्रोत पहुंच चुके हैं। हम एक मिनट साइलेंस में बैठकर उनके वाइब्रेशंस को फील करेंगे। ओम शांति। हमारे मंच की शोभा अपनी वाणी और वाइब्रेशन के द्वारा सभी को प्रेरणा देने वाले विधि और अध्यात्म के विद्वान महानुभावों का हम तहे दिल से बारंबार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ आप सभी का भी कि आप माउंट आबू ज्ञान सरोवर के पवित्र एवं शुद्ध वातावरण के बीच अपने परम पिता परमात्मा सुप्रीम जस्टिस के घर में आए हैं। वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं विधिक क्षेत्र के विद्वान भाइयों और बहनों का अपने ही घर में अपनों के द्वारा अपनों का ही हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अपने लिए ताली बजाएंगे। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे सभी जो वरिष्ठ हैं उनका बैजेस, फ्लावर, तिलक और फ्लावर्स के द्वारा स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ पटका पहनाकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। और हम अनुभव करेंगे क्योंकि परम पिता परमात्मा के घर में जैसे ही आपके कदम पड़े तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत स्वयं परमात्मा ने किया है, यहाँ के वातावरण ने किया है, यहाँ की नेचर ने किया है। तो आप सब अपनी तालियों के द्वारा परम पिता परमात्मा के स्वागत को और अपने स्वागत को भी अनुभव करते रहेंगे। जूरिस्ट बीइंग के द्वारा ज्ञान सरोवर में आज का ये कार्यक्रम हमारे बीच हम सभी के आदरणीय सम्माननीय राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी भी पहुंच चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत दिल से तालियों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी इंदौर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते। बहनों से भी कहूंगी कि वो सम्मान के रूप में पटका तिलक के द्वारा भी हमारे दोनों आदरणीय भाइयों का स्वागत करेंगे। और हम तालियों के द्वारा अपने मन के उद्गार जरूर व्यक्त करेंगे। ताली बजाना शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जितनी तालियां बजती हैं उतना हमारा मन अंदर से बारंबार गदगद होता है, क्योंकि ताली और खुशी में ताली बजाते हैं तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, मन एकाग्र हो जाता है। बाहर से ताली बजती है और अंदर से मन एकाग्रता को अनुभव करता है। आज जूरिस्ट बीइंग के द्वारा ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का विषय जो आप सामने भी देख रहे हैं, मूल्यों पर आधारित न्याय अर्थात कानून की आत्मा है। वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ, अर्थात जब हम मूल्यों को जीवन में लाएंगे, समरसता, समानता, तभी सही न्याय प्रणाली के द्वारा एक मूल्य निष्ठ समाज की स्थापना कर सकेंगे। क्योंकि कानून की आत्मा मूल्यों में बसती है, नैतिक मूल्य ही श्रेष्ठ न्याय का आधार है, नैतिक मूल्य ही श्रेष्ठ समाज का आधार है। ज्ञान सरोवर की पवित्र धरा पर वैल्यू बेस्ड जस्टिस का दीप जलाने हम सब आए हैं, जहां कानून की आत्मा मूल्यों में मिलती है, जहां कानून की आत्मा मूल्यों में मिलती है, न्यायविद मंच पर न्याय की ज्योति जगती है, न्यायविद मंच पर न्याय की ज्योति जगती है। इस सम्मेलन में विराजमान है विधि के अनमोल रतन, इस सम्मेलन में विराजमान है विधि के अनमोल रतन। आप सभी के विचारों से ही बनेगा ये समाज सफल और सशक्त, क्योंकि परमात्मा को आज सभी जो कहते हैं ना कानून के रखवाले या न्याय के फरिश्ते, तो आप सब पर नाज है कि आपके द्वारा ही एक मूल्य निष्ठ समाज की स्थापना हो सकती है। आप सभी के द्वारा ही इस सृष्टि पर फिर से एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म की स्थापना हो सकती है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीके दत्मल भाई जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप जुरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ आप ही के सहयोग से जुरिस्ट विंग का विस्तार और संचालन में आपकी अद्वितीय भूमिका रही है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप के माध्यम से कानून के क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों का संचार करना आपके जीवन का लक्ष्य है। आपका स्वभाव बहुत ही सहज, ज्ञान की गहन अनुभवों से भरपूर है, सेवा और समर्पण की आप प्रतिमूर्ति हैं। तो अभी मैं नथमल भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना वेलकम स्पीच हम सभी के समक्ष रखेंगे। नथमल भाई जी,
ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। हमारे सम्माननीय मंच, राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी, ऑनरेबल जस्टिस वीके नायक जी, विद्या दीदी, ब्रदर आरके शिवाल जी, डॉक्टर गीता दीदी, लक्ष्मी दीदी, हमारे पीताम्बर आचार्य जी एडवोकेट जनरल, और हमारी निशा दीदी जो खास दिल्ली से पधारे हैं। मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है, पूरे भारतवर्ष से इतने लर्नेड एडवोकेट्स, जजेज, विभिन्न हाई कोर्ट से इस प्रांगण में उपस्थित हैं। ये ईश्वर विश्वविद्यालय जहां पर कि सुप्रीम जज जो सारी सृष्टि को चलाता है, उस सुप्रीम जज के दरबार में आप अपनी यात्रा में भी कुछ सुविधा असुविधा हुई होगी, फिर भी आप यहां पहुंचे। और मुझे यह भी ज्ञात है कि आप सबका एक एक मिनट बहुत मूल्यवान होता है जब आप अपने प्रोफेशन के साथ होते हैं, तो उन मूल्यवान पलों को और मूल्यवान बनाने के लिए, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, और इसका सुंदर सा टॉपिक भी आप देख रहे हैं, वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ। और आपके पास तो वो जिसको कहते हैं कि विद्या है, आपके पास वो कला है कि कोई भी दुखी आत्मा आपके समक्ष आती है और उसको आप न्याय दिलाते हैं, उसके जीवन में खुशियां भर देते हैं। तो आप वो सत्ता हैं, आप वो विचारधारा के लोग हैं, आपका जीवन शैली उतना ऊंचा श्रेष्ठ है। और उसमें जैसे कहते हैं कि गहना बना हुआ है, केवल उसकी पॉलिश बाकी है, तो आप अपने जीवन में वो पॉलिश भरने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो इसलिए मैं आप सबका इस धरा पर, इस विद्यालय में, इस प्रांगण में पधारने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत स्वागत हो, सभी तालियों से भी अपने आप के लिए। और विशेष रूप से आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, जो इस विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसके आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, उस व्यवस्था के अंदर, उस समय के अंदर भी अपना एक बहुमूल्य समय निकाल करके आपके समक्ष आप मंच पर विराजित हुए। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी जी, जो खास हमारे इस विश्वविद्यालय के एक सुंदर एग्जाम्पल हैं। मैं हमेशा मंच से कहता हूं कि हमारे जुडिशरी के लोग या जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि ये दोनों काम इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एग्जाम्पल हैं। जब आप जजशिप में थे तब भी ब्रह्मा कुमारी से उतना ही दक्षता से, उतना ही लगन से, प्यार से आप रेगुलर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े रहे, और आज भी उतनी ही लगन प्यार से जुड़े हैं। और हमारी जूरिस्ट विंग के आप वाइस चेयर पर्सन भी हैं, आप एमपी इंदौर से पधारे हैं, तो आपका भी मैं इस मंच से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस बी के नायक जी, आप उड़ीसा हाईकोर्ट में फॉर्मर जज के रूप से आपने सेवाएं दी, उनके बाद आप ह्यूमन राइट में भी सेवाएं दी, लोकायुक्त में भी जुडिशियल मेंबर के रूप से सेवाएं दी। और मुझे आज इतनी खुशी है कि कई वर्षों के निमंत्रण के बाद आप यहां पधारे, तो आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऑनरेबल एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य जी, आप जब से हमारी एडवोकेट जनरल बने हैं, करीब 2 साल हुआ है, उसके पहले से भी मैं आपको निमंत्रण देता रहा, लेकिन आप यहां पर आज पधारे, हमें बेहद खुशी है। आपका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत हो, स्वागत, स्वागत। हमारी राजयोगिनी बीके विद्या दीदी, जो खास बेलगांव से पधारे हैं, और हमारी जूरिस्ट विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर की रूप से भी सेवा देते हैं, और आप प्रोफेशन से भी एडवोकेट हैं, साथ साथ वहां के सेंटर्स भी आप संभालते हैं, वहाँ के सब जोन इंचार्ज भी हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत तहदिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ब्रदर आर के सिवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत तहदिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजयोगिनी वी के लक्ष्मी दीदी जी खास सोनीपत से पधारे हैं और आप हमारे नॉर्थ इंडिया के अर्थात पंजाब जोन के, आप हमारी जूरिस्ट विंग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ साथ हमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर, बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है, उसका भी आप डायरेक्टर हैं, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और हमारी निशा दीदी जो बहुत ही सुंदर रूप से संचालन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और हमारी गीता दीदी, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और विशेष स्वागत आप सभी लर्नेड एडवोकेट्स ब्रह्मा कुमार भाई और बहने, और हमारी चेयरपर्सन जो कल आप रूबरू होंगे हमारी इनॉग्रल सेशन में, मेरा तो दिल करता है कि आप भी मंच पर आएं। हमारी पुष्पा दीदी जी जो सम्मुख उपस्थित हैं, आपका ये जो हमारा जूरिस्ट विंग है, आप हमारी चेयरपर्सन हैं, या ये कहें कि जूरिस्ट विंग के आप एक स्तंभ हैं, जो हमारी जूरिस्ट विंग इतना सुंदर कार्य कर रही है, तो आपके नेतृत्व में, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। साथ साथ हमारी लता दीदी जी, आप भी कल उनसे सुनेंगे, तो आप भी हमारी नेशनल जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे एडवोकेट राठी जी भी नीचे बैठे हैं, और सभी जो भी हमारे लर्नेड एडवोकेट्स इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं, आप अगर ना होते तो ये कॉन्फ्रेंस भी नहीं सजती, तो आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
आपका भी भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मधुरवाणी ग्रुप पहुंच चुका है, सतीश भाई, नितिन भाई, गोविंद भाई और बिजिंदर भाई। आपकी ये विशेषता है कि जब आपको कार्यक्रम दिया जाता है उसी क्षण ही आप गीत तैयार करने की आपको कला है, और सतीश भाई जी ने 3000 से भी अधिक गीत लिखे हैं और उसमें से खुद भी गाए हैं, और साथ ही साथ आपके गीतों को सिंगर जो बहुत फेमस सिंगर हैं उनके द्वारा भी गाया गया है। और नितिन भाई को भी आप देख रहे हैं, आगे भी उनके गीत सुनेंगे। नितिन भाई को एक गॉड गिफ्ट है कि वो मेल और फीमेल दोनों की आवाज निकाल सकते हैं, इसके अलावा बहुत आवाजें निकालने में उनको सक्षमता है, तो आप उनसे भी आगे सुनेंगे। तो हम मधुरवाणी ग्रुप से मधुर वाइब्रेशन गीत के द्वारा सम्मान के साथ साथ मधुर वाइब्रेशन को भी महसूस करेंगे, और उसी आधार पर अपने मन को एकाग्र करते हुए उस परमात्मा की अनुभूति भी करेंगे।
ओम शांति। एक बार सभी साथ में कह लें, ओम शांति। अरावली माला पहनाए, आबू देता है चंदन, हरी भरी इन वादियों में आपका स्वागत अभिनंदन, आपका स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत।
सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार, अब धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार, अब धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। न्याय देवों का न्याय के मंदिर में स्वागत सत्कार, न्याय देवों का न्याय के मंदिर में स्वागत सत्कार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ बार। अध्यात्म सशक्तिकरण को दल न्यायविदों का आया, स्वर्णिम भारत निर्माण को हम सबने कदम बढ़ाया, अध्यात्म सशक्तिकरण को दल न्यायविदों का आया, स्वर्णिम भारत निर्माण को हम सबने कदम बढ़ाया। विश्व बापू करा रहे बापू का स्वप्न साकार, आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार।
आइए हम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार का निर्माण करें।
हम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार बनाए, एक ही पथ के पथिक हैं हम प्रभु योजना सफल बनाए, हम स्वर्णिम विचार से स्वर्णिम संसार बनाए, एक ही पथ के पथिक हैं हम प्रभु योजना सफल बनाए। न्याय नीति का जहाँ बने सब में हो प्यार ही प्यार, आबू धरती पर हो आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। अरावली की चोटियाँ झुक झुक नमन है करती, प्यार से आबू की फजाएं अभिनंदन है करती, अरावली की चोटियाँ झुक झुक नमन है करती, प्यार से आबू की फजाएं अभिनंदन है करती। स्वयं विधाता लिए बड़े किरणों में विजयी हार, आबू धरती पर हो आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार, आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार, आबू धरती पर सजा है फिर से दिव्य न्याय दरबार। न्याय देवों का न्याय के मंदिर में स्वागत सत्कार, न्याय देवों का न्याय के मंदिर में स्वागत सत्कार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार।
बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका भी सतीश भाई जी और पूरे ग्रुप का भी, जो हम सभी को सच में हम सबकी तार तो परमात्मा के साथ जोड़ी ही, साथ ही साथ हमें सबको सबका सम्मान याद दिलाया। अभी हमारे बीच आदरणीय पुष्पा दीदी जी जो जुरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं, तो मैं बहनों से कहूंगी कि वो आए और दीदी जी को सम्मान का प्रतीक पटका और तिलक बैज लगाकर स्वागत करेंगे, और हम तालियों के द्वारा भी दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
नमस्कार,
हमारे बीच राजयोगिनी बीके विद्या दीदी जी बेलगांव से हैं और आप कर्नाटक यूनिवर्सिटी, आप राजयोगिनी विद्या दीदी जी कर्नाटक यूनिवर्सिटी से हैं और आपने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। 15 वर्षों तक लॉ कॉलेज बेलगांव में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। 1993 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में और मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा स्पार्क विंग की भी जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आपसे हम आग्रह करते हैं आप आइए और ब्रह्मा कुमारी संस्था के की गतिविधियों के ऊपर भी अपने विचार प्रकट करेंगे, साथ ही साथ जूरिस्ट विंग पूरे भारतवर्ष में क्या सेवाएं करती है और उसका लक्ष्य एम क्या है वो भी आपके समक्ष बताएंगे।
वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ, इस सुंदर कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई बहनों का और मेहमानों का अभिनंदन करते हुए, आप सभी कल से इस प्रांगण में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कैसे यह संस्था अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। इस वर्ष को हम नव दशकोत्सव रूप में मना रहे हैं। 90 इयर्स का एक निर्विघ्न सेवा पूरे वर्ल्ड में कैसे फैल चुकी है, अगर इतिहास को देखा तो पता चलता है कि यह कोई मनुष्य से होने वाला काम नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जैसे धरती पर धर्म न्याय की कमी पड़ेगी, उस समय पर आकर मैं इस दुनिया को फिर से परिवर्तन करूंगा और इसको फिर से स्वर्ग बनाऊंगा, यह जो कहना है वो करने के लिए आ चुके हैं। आप सभी न्याय से संबंधित बहुत ही विशिष्ट गण है और न्याय प्रदान करने के लिए आपका कार्य चल रहा है, जिस कारण से ही आज तक दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में थोड़ा बहुत अच्छाई चल रही है। परंतु फिर भी संपूर्ण रूप से धर्म न्याय की स्थापना हो, इस कारण से ये संस्था अपना कार्य निस्वार्थ रूप में पूरे वर्ल्ड में कर रही है। आज 140 कंट्रीज में इसकी शाखाएं हैं और इसकी विशेषता यह है कि खास यह महिलाओं से चलने वाली एक विशेष विशिष्ट संस्था है जो 140 कंट्रीज में अपनी शाखाओं को खोला है और इसमें कोई भी प्रकार के भेदभाव नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने खुद को समझे और खुद के अंदर की शक्तियों को जागृत करे और उसको समाज में फैलाए, ताकि यह समाज फिर से सुंदर जरूर बनेगा। इसी लक्ष्य को लेकर हर एक के अंदर के हिडन पावर्स को इमर्ज करके उन सभी के अंदर की उन शक्तियों के आधार पर इस समाज को, इस संसार को फिर से स्वर्णिम संसार बनाने का एक बहुत सुंदर लक्ष्य लेके ये संस्था कार्य कर रही है। 1936 सिंध हैदराबाद में ये शुरू हुई। प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके आप फोटो यहाँ देख रहे हैं, उनके द्वारा ये संस्था शुरू हुई और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से बाद में रजिस्टर हुआ। 1950 में यहाँ माउंट आबू अथवा वर्तमान समय पर जिसको हम आबू राज कहते हैं, इसमें आकर उन्होंने अपनी संस्था की सेवाओं को शुरू की और आज पूरे वर्ल्ड में हर धर्म के, विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर प्रकार के व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति, हर आयु के व्यक्ति और हर लिंग के व्यक्ति आकर यहाँ अपने अंदर की हिडन पावर्स को जागृत करने के लिए सक्षम है और उसी कार्य में लगे हुए हैं। 10 लाख से अधिक रेगुलर मेंबर्स इस संस्था में कार्य करते हैं। 20,000 से अधिक भाई और बहनें अपने जीवन को, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे समाज में, लेकिन अपने जीवन को, इस संसार को परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन को त्याग करके चला रहे हैं। यहाँ माउंट आबू में या आबूराज में और नीचे हमारे शांतिवन प्रांगण है, जहाँ पे 30,000 तक लोगों आकर पूरे वर्ष में, एक एक बार 30,000 लोग आकर पूरे वर्ष में कई प्रकार के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। इस संस्था के द्वारा कई वर्ग भी अपने कार्य कर रहे हैं। हर वर्ग के, विंग के व्यक्ति कहता है कि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है, तो उनको स्पिरिचुअलिटी अगर हमारा बेस बन जाए जीवन का, तो कितना सुंदर हमारा जीवन होगा, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ होगा, ये बताने के लिए 25 विंग्स बनी हुई हैं, जिनमें जूरिस्ट विंग सबसे पहले है। तो जूरिस्ट विंग के द्वारा कई प्रकार की सेवाएं पूरे वर्ष होती रही हैं और इतने वर्षों से 1988 में सबसे पहले ये विंग्स के द्वारा सेवाएं शुरू हुई, उसको उसका फर्स्ट चेयरपर्सन आदरणीय रमेश शाह भाई जी, जो इस संस्था के एडवोकेट थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इस संस्था के चीफ ऑडिटर थे, उनके द्वारा शुरू हुई, उनके चेयरमैनशिप के द्वारा, और आज पूरे संस्था इस जूरिस्ट विंग के कई कार्य विधियों से पूर्ण रूप से अवगत है और अच्छी तरह से ये सेवाएं देती रही है। हजारों एडवोकेट्स, हजारों जजेस यहाँ आकर अपना जीवन का एक सुंदर मार्ग देख के गए हैं और इसमें जुड़े हुए भी हैं। आप देख रहे हैं मंच पर भी हाईकोर्ट के जजेस बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि आदरणीय जस्टिस कृष्ण नायर जी इस संस्था के फर्स्ट पैटर्न थे। उन्होंने जब इस संस्था में आए तब लीगल डिपार्टमेंट में या लीगल अवेयरनेस के बारे में उन्होंने एक नया दिशा दी और कहा कि जूरिस्प्रूडेंस हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ओम शांति जूरिस्प्रूडेंस किया जाए ताकि लोग सच्चाई रूप से या फिर लोगों तक पहुंचने के लिए जो न्याय देना है उसमें पूर्ण रूप से सक्षम हो सकते हैं, ये बात उन्होंने उसी समय बताया था। तो ऐसे यह जो खास करके लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सेवाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलती रही हैं और हर वर्ष कई प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, रिट्रीट्स और योग शिविर का प्रोग्राम चलती रहती हैं और पूरे भारत में तो बहुत ही सुंदर रूप से कई प्रकार की योजनाएं होती हैं। हर वर्ष एक योजना रखा जाता है, इस वर्ष में यही योजना रही है कि वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ। अगर ये सोल को हम लॉ में इंक्लूड किया जाए तो यह भारत फिर से जरूर सुंदर बनेगा, न्यायविद बनेगा और बहुत ही सुंदर रूप से इस समाज को हम परिवर्तन कर भी सकते हैं, यही लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम चलती रही है। संस्था को यूनाइटेड नेशंस का एक एनजीओ रूप में रिकॉग्नाइज भी किया गया है और वहाँ के जो कई डिपार्टमेंट्स हैं, इकोसोक, यूनिसेफ, इसमें इसको कंसल्टेटिव स्टेटस भी है और यूनाइटेड नेशंस के कई ऐसे पीस मेडल्स भी संस्था को मिली हुई हैं और संस्था चल रही थी एक छोटे रूप से, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में 10 लाख से अधिक लोगों से यह चलती रही है। ऐसे आप सभी जूरिस्ट विंग में जो आए हैं, आप सभी यह देख रहे हैं, देखते होंगे कि सचमुच अभी न्याय के बारे में और अपने जीवन की सुंदरता के बारे में हम सभी को अवेयरनेस जरूरी है। हम एक सुंदर बात देख रहे हैं, आज सरकार ने भी इस बात का ध्यान खिंचवाया है, हम देख रहे हैं यहाँ न्याय देवता जो खड़ी है, आज तक उनकी आंखें बंद रहती थी, अभी खुल गई है। अर्थात अवेयरनेस हम सभी को बहुत बहुत जरूरी है, यह सरकार ने भी सोचा है और इसी कारण से अंधविश्वास को या फिर आंखें बंद करके जरूरी नहीं है, विथ अवेयरनेस हम न्याय प्रदान कर सकते हैं तो बहुत जल्दी यह समाज सुंदर बनेगा, इसी लक्ष्य से सरकार ने यह किया है। तो वही कार्य आध्यात्मिक रूप से और आध्यात्मिकता की बेस से यह संस्था करती आ रही है। तो जूरिस्ट विंग भी ऐसी सेवाओं को बहुत बड़े रूप से देती जा रही है। यहाँ के चेयरपर्सन को आप देख रहे हैं, आदरणीय पुष्पा दीदी जी बैठी हैं, और वाइस चेयरपर्सन आदरणीय जस्टिस राठी भाई जी भी हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, और फिर लोकल लेवल पर भी कई ऐसे जोनल लेवल के कोऑर्डिनेटर्स हैं, कई मेंबर्स हैं। सभी मिलके इस समाज को फिर से सुंदर बनाने के लिए लॉ के कानून के जो सोल है, न्याय प्रदान करना, तो उसको लक्ष्य में रखकर जो कार्य कर रही है वो बहुत श्लाघनीय है। आप सभी अभी 3 दिन में ये अनुभव जरूर करेंगे, और जरूर इसके बारे में आप और स्टडी करना, जाने के बाद भी इसमें जुड़ी रहना, ये हमारी शुभ संकल्प है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर विद्या बहन का, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें संस्था की गतिविधियों से भी अवगत कराया, और साथ ही साथ जूरिस्ट विंग का क्या रोल है, क्या भूमिका है, और कैसे इसके द्वारा समाज श्रेष्ठ बन सकता है, उसकी भी हमें एक सुंदर हमारे सामने उसकी एक फोटो रखी, एक चित्र रखा कि जिसे हम स्पष्ट देख सकते हैं। हमारे बीच आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीके नायक जी, फॉर्मर जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। आप उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे हैं। न्याय के क्षेत्र में आपका 35 वर्षों का अनुभव है। आपके न्याय के तराजू में हमेशा सत्य और धर्म का पलड़ा भारी रहा है, और आपके द्वारा दिए गए फैसले यादगार और मिसाल बन गए। आपके लिए यही कहना चाहूंगी, तराजू जिनके हाथों में और सत्य जिनकी जुबान पर, तराजू जिनके हाथों में और सत्य जिनकी जुबान पर, न्याय की मूरत धर्म के प्रहरी जस्टिस नायक जी, कलम जहां चलती है वहां अन्याय मिट जाता है, कलम जहां चलती है वहां अन्याय मिट जाता है, आपके फैसले ही समाज में विश्वास जगाते हैं, आप सत्य की एक प्रतिमूर्ति हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं आप आएंगे और आज के इस सम्मेलन में अपने विचार, अपने जो मन के विचार हैं, जो आप अनुभव करते हैं, वो सभी के समक्ष रखेंगे।
रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी रथी, रेस्पेक्टेड पुष्पा दीदी जी, रेस्पेक्टेड नाथमल भाई जी, राजयोगिनी रेस्पेक्टेड बीके विद्या बेलागवी जी, डॉक्टर पीताम्बर आचार्य, लोनेड एडवोकेट जनरल, रेस्पेक्टेड आर के शिवाल जी, रेस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके लक्ष्मी बहन जी, राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय जी, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रैटर्निटी, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. Namaskar. It's a matter of great honor and privilege for me to be here to speak on a very meaningful but at the same time complex topic, value-based justice, a soul of law. Natmal Bhai is after me since several years to come to this place to attend such seminars, conferences. But probably God wished only for this time. I have spent more than 40 years as a lawyer, as a judge. You see, the perspective of justice of a lawyer is different from the perspective of justice and the perception of justice by a judge. That I have experienced. What a lawyer wants, a lawyer is a professional. And he gives primacy to his profession. So he thinks only about the interest of his client, not the interest of the adversary. By any means, he wants to see that his client wins the litigation. But the perspective of a judge is quite different. A judge balances the evidence from both sides, the law on the concerned subject, and then renders a verdict. In giving a judgment or a verdict, the judge always keeps in mind that he never departs from settled legal principles. Giving judgment with this perspective may sometimes render injustice to one of the parties because the facts presented before the court may not be correct. Evidence led before the court may not be true. Whatever that may be. But to my mind, a judge as well as a lawyer, both should always strive to see that real justice, true justice is rendered. After pondering over the subject, I have prepared a small speech which I will read out to you all. When you hear the word law, we usually think of courts, judges, police, rules, punishments, and legal procedures. But today's topic reminds us that law is much more than that. Law is not just about sections and statutes. Law is about people. It is about fairness. It's about humanity. It's about doing what is right. And that is where values become important. I speak as a man who has seen law from the bar and the bench and spent decades inside the justice system. A law may be legally correct, but if it lacks compassion, honesty, morality and fairness, it cannot be truly said to be justice. In my years within the system, I have often felt the disputes brought before the courts are rarely confined to questions of law alone. Behind every litigation lies a human story of anxiety, reputation, livelihood, family relationship, or loss. That is why justice cannot remain disconnected from values. In constitutional democracies like ours, courts are not expected to function merely as mechanical interpreters of statutes. They are entrusted with a far greater responsibility. The preservation of constitutional values. As Honorable Justice D.Y. Chandrachud, the former Chief Justice of India, observed, the judiciary is not a mere interpreter of law. It's a conscience keeper of the Constitution. On times without number, the Supreme Court in different cases have observed that our Constitution is not a mere pedantic legal text. It embodies human values, cherished principles, and spiritual norms. This observation captures the true essence of value-based justice. The legitimacy of the judicial system rests not only upon legal authority, but on public faith that courts will uphold fairness, dignity, liberty, and constitutional morality even in difficult times. India has always believed in value-based justice. In our ancient culture, the idea of dharma was central to governance and society. Dharma did not simply mean religion. It meant righteousness, moral duty, ethical conduct, and justice. In the Mahabharata, it is said, dharma protects those who protect dharma. This means that when society follows righteousness and values, justice protects society in return. Even today, our Indian Constitution reflects these ideals. The preamble of the Constitution speaks about justice, social, economic, and political. It also speaks about liberty, equality, and fraternity. These are not just words. These are values. These are the moral foundations of our legal system. Friends, today the world is progressing rapidly. Artificial intelligence is entering legal systems. Businesses are expanding globally. But at the same time, we also are witnessing increasing corruption, cybercrime, financial frauds, violence, environmental degradation, and ethical decline. The challenge before the modern legal system is not the absence of laws, but preserving humanity amidst this increasing procedural complexity and technological expansion. This raises an important question. Are we really legally stronger but morally weaker? Many corporate scams in India have shown us that legal knowledge without values can become dangerous. We have seen cases like the Satyam scam, bank frauds, corruption scandals, and misuse of power. In many cases, laws existed, but ethics were missing. This is why value-based justice is necessary. Justice should not only punish wrongdoing, it should also promote honesty, responsibility, and social harmony. Swami Vivekananda said, "We want education by which character is built." Today, this idea applies strongly to legal education as well as general education. We do not only need skilled lawyers and intelligent judges, but we need legal professionals with a strong character and ethical values. A judge with wisdom and compassion can change lives. A lawyer with integrity can protect justice. A police officer with humanity can build public trust. And a citizen with values can strengthen democracy. Respected dignitaries, one important area where value-based justice is becoming very relevant is restorative justice. Traditional justice often focuses only on punishment, but restorative justice focuses on healing. It asks important questions. How can the victim recover? How can the relationship be repaired? How can society heal? This approach is deeply connected with Indian culture, where forgiveness, reconciliation and social harmony have always been respected. According to many legal researchers, restorative justice is about repairing harm and restoring relationships rather than only punishing offenders. This is especially important in cases involving juveniles, family disputes, community conflicts, and rehabilitation. Value-based justice is also important in environmental protection. Today, courts in India are actively protecting rivers, forests, wildlife, and future generations. Why? Because justice is not only about present convenience, it is also about future responsibility. When the Supreme Court protects the environment, it is not only applying law, it is protecting humanity and the human values. Similarly, gender justice is another important example. Laws alone cannot ensure women's safety and dignity unless society changes its mindset and values. True justice begins when people start respecting one another, not because of fear of punishment, but because of moral understanding and fellow feeling. Respected guests, in today's fast-moving world, people often confuse success with power, money, and status. But real success in law and governance lies in fairness and service to society. Former Chief Justice of India, Mr. M.N. Venkatachalya, once said, "The judiciary is the guardian of the rule of law and the values of the Constitution." This is a very powerful statement. The judiciary is not only an interpreter of laws, it is also the protector of the constitutional values, as I have said earlier. And therefore, value-based justice is not the responsibility of judges alone. It is the responsibility of all of us. Teachers, lawyers, students, policymakers, administrators, and citizens. If values disappear from society, no number of laws can create or preserve peace. But if values are strong, justice naturally becomes stronger. Before I conclude, I would share a very meaningful quote by Rabindranath Tagore. I quote, "Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the killer stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake." I unquote. This dream of Tagore can become reality only when justice is fair, human, and value-based. Let us therefore work towards a legal system where truth is respected, dignity is protected, equality is practiced, and compassion is encouraged, and justice reaches every individual. Because ultimately laws without values become empty, but law guided by values becomes justice. And that is why value-based justice is truly the soul of law. Thank you very much and good night.
बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस बी के नायक जी का कि आपने अपने विचारों में यही बताया कि कानून के अंदर हर एक मूल्य की बात की गई है लेकिन जब तक हम उन मूल्यों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो जो चीज सामने होती है और वैसे भी देखते कि जब हम किसी के पास कोई चीज देखते हैं तो पहला संकल्प यही आता है कि ये इसके पास उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी मेरे पास अच्छी लगेगी और उसके प्रति मेहनत भी करते हैं और अंदर में इतना विश्वास रखते हैं कि सेम उसके जैसी चीज हम ले लेते हैं फिर हम उसे नहीं देखते लेकिन हमारे पास आ जाती है हमें और देखते हैं और कहते देखो इसने मेहनत करके ले ली तो परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं कि जो मूल्य हमें पढ़ने में आते हैं दूसरों में दिखाई देते हैं वही मूल्य जब हमारे खुद के बन जाएंगे तो हमारे चेहरे पर हर समय खुशी रहेगी हम उस आनंद का अनुभव करेंगे जिसके लिए यहाँ पर सभी आए हैं और अभी जो सुन रहे हैं वो जब जीवन में आएगा तो एक एक मूल्य एक मूल्य भी अगर जीवन में दिखाई देता है तो इतनी पावर है कि वो सभी मूल्यों को लाने की क्षमता रखता है तो हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते अभी हम पीताम्बर आचार्य जी ऑनरेबल एडवोकेट जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा आप उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष प्रभावशाली रूप से रखने के साथ साथ समाज में कानून के शासन और नैतिक मूल्यों पर आधारित न्याय व्यवस्था के दृढ़ समर्थक हैं और आज के इस सम्मेलन में हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप आइए आप आए और अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे और साथ ही साथ समय की सीमा को देखते हुए हम अपने शब्दों को कम से कम शब्दों में सबके बीच कहेंगे या आपसे हम अनुरोध करते हैं
जय जगन्नाथ रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द जुरिस्ट विंग राजयोगिनी बी के पुष्पा दीदी जी वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जुरिस्ट विंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी जी चीफ गेस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी के नायक जी डॉक्टर नाथमल जी श्री आर के श्रीवल जी राजयोगिनी बी के विद्या जी डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स माय डियर एडवोकेट फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द टॉपिक व्हिच यू हैव चूजन टुडे फॉर डिस्कशन Value-based justice. I was wondering whether justice is ever without values. The term justice itself connotes a very high pedestal in the societal structure. And justice without value cannot be said to be a justice at all. So any dispensation of justice in the system which we have adopted has to be treated as value-based.
when I joined the High Court Bar as a young lawyer, the rotund, which was hanged behind the podium of the Chief Justice Court, with bold inscriptions, Tuleva Nayastu Badaraniya. I was asking myself in those days, what does it really connote? A person holding a balance in hands, it doesn't tilt this side or that side, but very firmly folding the taraju, Tuleva Nayastu Badaraniya. The balance of justice he holds. When a person occupies the seat of a judge, we address him as my lord, a divine chair. At the other side, in the bar, to which class I do belong, the equally a part of the same coin in the justice delivery system. When a person occupies a divine set, he is supposed to be carry values, and the person representing the other side who claims to be upholding the constitutional values for promotion of justice, for dispensation of justice, is supposed to be ethical. So the integrity of a judge coupled with the strong ethics of a lawyer balances the whole system which we ultimately call the justice. Friends, I sincerely congratulate the organizers for creating a platform to discuss on such a burning topic today, which has really assumed significance for very many factors, which I may not find an open forum to discuss now, but the posterity may someday question it and call it to deliberate and to discuss. But the platform where we are going to deliberate on this particular topic, which is also equally soulful for the sustenance of a good society, which we call a society where good prevails, that is guided by ethics, that is guided by strong law, governance, and spirituality, which come together in thoughtful dialogue. In today's rapidly changing world, such conversations are not optional. They are essential. When we speak of justice, we often think of constitutions, courts, institutions and procedures and technicalities. There are undoubtedly pillars of our civilization. But our ancient wisdom and traditions remind us that justice is not sustained merely by systems, it is sustained by a strong character. The law may regulate conduct, but values regulate conscience. Without conscience, justice risks becoming mechanical rather than human. With respect to judicial integrity, the famous Bangalore principle states, which has been acknowledged globally, the behavior and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. And it is so deeply engrafted and rooted in the minds of the people that value has to be preserved and protected. The Srimad Bhagavatam beautifully reminds us, Sa aive
पुंसं परोधर्मो जतु भक्ति रधुख्यजे अहिवेत्वक्य प्रतिहता जजात्मा सुप्रसीदति। द भगवतम टीचेस दैट हाईएस्ट धर्म इज दैट विच एलिवेट्स ह्यूमन कंसियसनेस एंड ब्रिंग्स इनर हार्मनी एंड पीस टू द सोल। दिस टीचिंग इज डीपली रिलेवेंट टू जस्टिस टुडे। True justice is not merely legal correctness. It must also preserve human dignity, social trust, and moral balance in the society. How relevant this reflection is even today. We live in an age of remarkable advancement. Technology is transforming governance, communication, and human life itself. Yet, alongside this progress, we witness rising conflicts, mistrust, corruption, emotional unrest, and ethical confusion. This tells us something profound. Human progress without moral grounding cannot create lasting justice. Lord Krishna tells Arjun in the battlefields, कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्वर्म ते शंगस्त्व कर्मणि। यू हैव ए राइट टू एक्शन अलोन नॉट द फ्रूट्स देयर ऑफ। दिस टीचिंग इज स्पेशियली मीनिंगफुल फॉर ऑल दोज एसोसिएटेड विथ लॉ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस। जस्टिस मस्ट नेवर बी गाइडेड बाय पर्सनल गेन, pressure, popularity or fear. It must arise from sincere commitment to duty and truth. Whether one is a judge delivering a verdict, a lawyer defending constitutional values, or an administrator serving society, the spirit of selfless duty remains central to ethical public life. Today, therefore, the idea of value-based justice becomes extraordinarily important. A judge guided by integrity strengthens public faith. A lawyer guided by ethics strengthens democracy. A bureaucrat guided by compassion strengthens governance. And a citizen guided by self-restraint strengthens the nation. Spirituality is not withdrawal from responsibility. It is purification of responsibility. It helps individuals remain calm amidst pressure, ethical amidst temptation, and compassionate amidst authority. Institutions can impose accountability, but only inner values can inspire righteousness. That is why the work of organizations like Brahma Kumaris deserves deep appreciation. Their emphasis on meditation, self-transformation, peace, and ethical awareness contributes significantly to the moral strength of the society. As India moves forward as a rising global power, we must ensure that our progress remains rooted in civilizational wisdom. Our strength should not be measured only by economic growth, but also by ethical leadership, social trust, and moral courage. The world today seeks not only innovation from India, but moral direction, and therefore our system of law and governance must continue to reflect the timeless Indian ideals of dharma, dignity, compassion, and responsibility. Before I conclude, I would like to leave one thought. Justice becomes truly transformative and value-based when three forces unite: the strength of law, the wisdom of values, and the purity of consciousness. When these come together, justice does not merely resolve disputes, it uplifts
humanity. I once again extend my heartfelt congratulations to the organizers and my best wishes for the success of this conference. May these deliberations inspire a more compassionate, ethical, and spiritually awakened approach to the entire justice delivery system and public life. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आचार्य जी का कि आपने अपने शब्दों के द्वारा यही बताया कि कानून या न्याय बिना मूल्य के निरर्थक है। अगर न्याय करना है तो उसमें मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर आर के सीवाल, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, तो हम आपसे भी आग्रह करते हैं आइए और आज के इस कॉन्फ्रेंस में आप अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे समय का ध्यान रखते हुए।
फर्स्ट टाइम आया हूँ और ब्रह्मा कुमारी सेंटर को देख के ऐसा लगा कि जो भी कोई यहां से मैसेज जाएगा वो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, तो उससे ना आप लोग एक तरह से मैसेंजर का काम कर सकते हैं। और यहां जो वातावरण देखा है, राजयोगिनी जी आदरणीय राजयोगिनी जी हैं, बड़े बड़े जजेज रिटायर्ड हैं, सर्विंग जजेज हैं, ये वाकई कानून में बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो मैं कुछ ज्यादा कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं करूंगा, बल्कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहा हूं, ट्रेवलिंग पूरा हिंदुस्तान में किया है, बहुत तजुर्बा लिया है, LLB किया था 1984 में व्हेन माय पोस्टिंग दिल्ली में था। क्यों? क्योंकि कानून इंसान को एक मजबूत और डिसीजन गुड डिसीजन मेकर बनाता है कि आप कहीं से भी घर में रहें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, सभी जगह, तो कानून की जो शिक्षा है वो आपको डिसीजन मेकिंग में एक लॉफुल और एक सोलफुल डिसीजन लेने में मदद करती है। इसीलिए मैंने कानून पढ़ा था और रिटायरमेंट के बाद फॉर द लास्ट 22 ईयर्स मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, राजकुमार यादव जी और दीदी यशु जी के तत्वाधान में उन्होंने मुझे ये समझा कि मैं यहाँ जाऊं और अपने विचार रखूं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ, तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। इट इज ए बेसिक यूनो इंसिक्ट ऑफ द लॉ एंड द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, जो हमने देखा है कि लॉ में, इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, एवरी वर्ल्ड हैज द पावर। इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ एवरी वर्ल्ड हैज द पावर, सो यू ऑल होल्ड द पावर। नाउ हाउ यू यूज दैट पावर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट and this depends upon you only, we people, those who are to take decisions, okay, how we make our this power useful. Because a great saying bhi hota hai ki power corrupts the person and absolute power corrupts him absolutely. We have observed in civil service also, we have come across many top brass of the bureaucracy, and we have seen. So everything flows from the top. It is not that things go from the bottom. So this is the most important aspect in the law also. Now, you must be reading the newspapers. I also read the newspapers. And whatever comes, you know, in reference to the law, what I will advise you people, kindly, you must read it. And you must read what is written in between the lines. Only I have got 2-3, you know, last week paper cuttings. And these, you know, the opinions, the views of the judiciary itself says that yes, there is a requirement for, you know, value-based decisions and soulful decisions. Soulful decisions का मतलब ये है कि हमें ये सोचना है कि जो हमारे सामने जिसको हमको इंसाफ देना है, वो हमारे सामने बैठा है। हमें उसकी स्थिति में लाके वहाँ बैठ के तब डिसीजन देना है। ये बहुत जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग में एक जुडिशरी का जो पार्ट होता है। अब आपने भी कभी देखा होगा, आप सभी एडवोकेट्स होंगे सारे। क्वेश्चन एक थॉट है, जस्ट ए थॉट, कि हम ट्रायल कोर्ट में केस लगाते हैं, उस केस में डिसीजन होता है, उसको सजा मिलती है या कुछ होता है। ट्रायल कोर्ट में केस चलता है 15 साल, 10 साल, 20 साल, और डिसीजन आ जाता है, वो अपील में जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उल्टा कर देती है। क्या हुआ है भाई? What is the reason? Fact same है जो ट्रायल कोर्ट ने डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस निकाले हैं। कानून सेम है, लॉ भी सेम है, फिर ऐसे क्या हुआ है कि वहां उल्टा क्यों हो गया? Then the case goes to the Supreme Court, Honorable Supreme Court. Supreme Court, after hearing the case, it turns down of the High Court decision and concludes with the trial court decision. Arbik, हुआ क्या है? क्या हुआ है? कभी आपने इस चीज को ना, ये बहुत थोड़ा सोचने का विचार है। मैं 22 साल से इसका जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। क्या आफ्टर ऑल हुआ क्या है? फैक्ट सेम है, कानून सेम है, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में जज डिसीजन दिया है वो भी क्वालिफाइड कानून के रखवाले हैं, जो उनके ऊपर हाई कोर्ट बैठे हैं वो भी बहुत तजुर्बेकार वकील रहे होंगे या जुडिशियल सिविल सर्विस से आए होंगे, और सब चीज सेम है, फिर हुआ क्या है? और ये क्यों हुआ है? We must find out the answer. Why this has happened? क्या है इसमें? Biasness है, prejudice है, कोई कलर है, कोई और थिंकिंग है? What exactly is there? Then comes के साथ interpretation of law. Now interpretation of law, अगर हर इंसान जिसने वकालत की है और वो जज है, अगर वो इंटरप्रिटेशन होके 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई ये जो इसने 40 साल जेल में गुजारे हैं ये गलत है, है? उसकी तो लाइफ गई ना, कौन? So second, the most important, क्योंकि I was in civil services, अगर जरा सा भी हमारा decision deviate हो जाता था तो we used to be questioned, why? Why this decision? So, what I feel personally means के kindly my words should not be taken as any contempt or something like that against the judiciary or you know complaint वगैरह, nothing like that. These are my personal views, and I just have the disclaimer also on this. So, what I see that is unless there is a accountability in the judiciary, unless there is accountability in the judiciary, I don't think that the value-based justice or the soul of the law, this will all remain on paper. The person who is suffering will continue to suffer. Everybody doesn't, har ek aadmi Supreme Court nahi ja sakta. मैं 22 साल से रिटायरमेंट के बाद आया था. हमारे पीडी गुप्ता जी रिटायर्ड जज थे और हमारे यादव जी हैं, राजकुमार यादव जी. मैं इनको बड़े प्यार से प्रिंस यादव भी बोलता हूं हाई कोर्ट में. तो ये मार्गदर्शन रहे हैं. मैं इनसे भी यही सवाल करता रहता हूं कि भाई आप एडवोकेट हो, आप भी ये करते हो. तो मैं पर्सनली ना इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस है एक संस्था जो गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देती थी. और ये संस्था जस्टिस पीएन भगवती जो होते थे पुराने, उनकी सेटअप की हुई थी. और उस टाइम ये सरकारी लीगल एड नहीं आया था, ये तो शायद 2005 के बाद ही आया है ये. तो मैं उस संस्था में जुड़ गया था क्योंकि एक बहुत बड़े एडवोकेट जनरल थे. उन्होंने मेरे से कहा कि भाई शिवाल साहब, आप रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहते हैं? मैं कहा मैं सेवा करना चाहता हूं. कहते हो आपने तो लॉ भी किया हुआ है, तो आप एडवोकेट बन जाइए. तो बस वहां से देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस. और अब मैं जितने भी गरीब लोग आते हैं उनको कानूनी सलाह देते हैं, उनका केस लड़ता हूं प्रो बोनो. एक नया पैसा नहीं लेते हैं हम. एंड आई ट्रेवल फॉर द लास्ट 20 इयर्स. आई एम ट्रेवलिंग टू वेरियस कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, काकरडूमा, द्वारका, तीस हजारी, रोहिणी, पटियाला हाउस, सभी कोर्ट में मैं गरीब लोगों के केस मैंने किए हैं. काला कोट पहन के आर्गू करता हूं. और मैं आई एम बहुत शुक्रगुजार हूं जजेस का, आइदर कंसिडरिंग माई एज और कंसिडरिंग माई यू नो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द केस. बिकॉज मैं कोई ना वो नहीं करता हूं ज्यादा आर्गूमेंट वगैरह, कुछ भी नहीं. आई जस्ट टेक द फैक्ट्स, कनेक्ट विद द लॉ एंड देन आर्गू द केस. गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो रोते हुए आते हैं. एंड वेन दे विन द केस देखिए सर, थैंक यू वेरी मच. मन का नहीं, बाबा का धन्यवाद करो, शिव बाबा का धन्यवाद करो. अब हम लोग यहां आए हैं, ये अपने आप से नहीं आए हैं, वो सुप्रीम सोल ने बुलाया है यहां कि आप आइए और जो कुछ आप कहना चाहते हैं इस मंच पे कहिए, ताकि ये मैसेज और लोगों को भी पहुंचे. बड़े बड़े मैंने एडवोकेट्स देखे हैं, इतनी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा. मैंने कहा भाई आप कहां गए थे? कि जो वकील साहब के बाद गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई पहले आप ना 21,000 रुपया दे दो. वो कहते साहब मैं कहां से लाऊंगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते ना, देन आई टेक अप देयर केसेस. तो बड़े वकीलों को भी मैं यही सलाह देता हूं कि आप अपने केसेस में से अगर 5% केसेस भी गरीब लोगों के लिए फ्री करोगे तो आपको शिव बाबा की दुआएं मिलेगी. और आपके जो नॉलेज होगा ना वो और ज्यादा चलेगा, क्योंकि हाँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे यही कहते थे जब भारत सरकार ने ना नोटरी की वैकेंसी निकाली थी, नोटरी अपॉइंटमेंट ऑफ नोटरी, तो मुझे कहते थे अरे भाई शिवाल साहब अब तो आप इतने 78 ईयर्स के हो गए हैं, 90, आपको कौन नोटरी बनाएगा। मैंने कहा भाई देखो कानून में उम्र की तो कोई वो नहीं होती है और उसमें कानून में भी नहीं है। तो मैंने जस्ट अप्लाई किया और इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन, और मैंने अपने भतीजे का मदद लिया और देखो शिव बाबा ने मुझे नोटरी बना दिया भाई। और अब मैं हाई कोर्ट में ना गरीब लोगों के कहता हूं कि भाई फ्री में मैं आपके अटेस्टेशन करूंगा, तो बाकी जो नोटरी थे वो सब नाराज हो गए, कहने लगे ये तो ये कहां से, ये रामराज में कामराज कहां से आ गया। तो वही चीज है कि देखो वैल्यू बेस्ड डेफिनेटली हमारे अंदर है सोल। आप कभी भी देखिए कि अपने अंदर हम अगर झांक के देखेंगे, अच्छाई और बुराई सिर्फ दिल और आत्मा, एक बहुत मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, अगर इधर गए तो शिव बाबा के भक्त बन जाएंगे और इधर गए थोड़ा सा तो फिर हमें ये जो कोर्टों में ना गिनती बढ़ानी पड़ेगी मुकदमों की, तो यही होता है। तो अपने हम सब कुछ हमारे अंदर ही है, अगर हम अपने आराम से चलेंगे। आज देखिए मुझे 22 साल हो गए हैं गरीब लोगों की सेवा करते हुए एंड आई फील सो हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। कोरोना के टाइम जो थे आपने देखा होगा, कोरोना के टाइम में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। कैन यू बिलीव कि मेरे रिश्तेदारों के इतने फोन नहीं आए जितने फोन उन लोगों के आए, जिन गरीब लोगों के जिनके मैंने केस किए थे। सर आप ठीक है, सर कोई सेवा चाहिए, सर कुछ चाहिए, इससे ज्यादा और मानवता की सेवा में क्या है। क्योंकि अब वो सभी वहां हाई कोर्ट में कहते हैं कि सर आप पैसा लीजिए, मैं लाइफ को ना मनी के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरी लाइफ कोई और चीज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना और अब जो आगे करना है वो आप लोगों को करना है। बाकी ये जरूर सोचना कि ऐसा क्या होता है कि ये डिसीजन क्यों बदल जाते हैं, क्या होता है बस। और एंड सेकंड थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी, अगर डिसीजन ट्रायल कोर्ट में गलत है अकाउंटेबिलिटी, हाई कोर्ट में गलत है अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं है कि हाई कोर्ट जिसने गलत डिसीजन लिया या गलत डिसीजन दिया वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएगा, क्या होगा भाई। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी हर स्टेज पे होनी चाहिए, मेन थिंग। ओके धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अब यहाँ आए हैं तो सभी प्रश्नों के जवाब आप लेकर ही जाएंगे। अभी आपको एक सूचना भी देनी थी कि जुरिस्ट विंग के जो भी कार्यक्रम हैं इस हॉल में जो भी चल रहे हैं वो सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर भी चल रहे हैं और ज्ञान सरोवर एकेडमी चैनल पर भी, साथ ही व्हाट्सएप के चैनल पर आपको आपकी दैनिक दिनचर्या और आपके फोटो भी मिलेंगे। इसलिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म की जानकारी भी उस पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आप उसे भी फॉलो अवश्य करें, जगह जगह QR कोड लगे हैं स्कैन करके फॉलो करें। और इसके साथ साथ आपसे एक और आग्रह है कि इस हॉल में चलने वाले कार्यक्रम तो आपको YouTube पर दिख जाएंगे, लेकिन आपको वाइब्रेशन लेने इसी हॉल में आना होगा, सुबह भी दोपहर भी शाम को भी, क्योंकि वाइब्रेशन YouTube से मिल नहीं पाएंगे। तो आप YouTube से प्रोग्राम देख लें, अपनी दिनचर्या देख लें कि किस किस टाइम हॉल में आना है और यहीं आकर के आप अटेंड करेंगे। जब आप यहां से वापस अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो आप इन प्रोग्रामों को देखेंगे भी, अटेंड भी करेंगे, और जो सेवा केंद्र है वहां पास उसमें भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर गीता जी, आप आज के इस सम्मेलन में आपका शुभ आगमन हुआ हम सभी के बीच, हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ऑल इंडिया वुमेन लॉयर एसोसिएशन दिल्ली की प्रेसिडेंट भी हैं। आपका जीवन न्याय, समानता और नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता जीता जागता उदाहरण है। आप सरल, दृढ़ और न्याय के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज के कॉन्फ्रेंस के प्रति अपने विचार सभी के समक्ष रखेंगे।
सबसे पहले मैं मंच पर आसीन हमारे काफी सारे जजेस, एडवोकेट और दीदी, आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और एक बार आप सबसे अपील करती हूँ कि एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। मुझे यहाँ पर बैठकर वो फील नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, ओम शांति। अभी कुछ लग रहा है तो मेरे दो क्वेश्चन हैं आप सब से। अभी आपको भाई साहब ने कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी दिया, कुछ किया। अब वकील हैं तो वकीलों वाली आदत जाती नहीं है, कभी जज से क्वेश्चन करते हैं तो कभी अपने क्लाइंट से करते हैं। तो अभी हम सब यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के उसमें आए हैं। ब्रह्म कुमारी से कितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आप हाथ खड़ा करेंगे? ऑलमोस्ट। अब मुझे ये बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारी से कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देती हूं, ब्रह्म कुमारी नहीं है, वो ब्रह्म है, हमें जिसे दूर करना है। इट्स अ ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा आप ने सुना है, ब्रह्मा जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे हिंदू शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश हम बहुत बोलते हैं। तो ब्रह्मा किस किस ने नाम सुना है? हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है, अगर आपने किसी ने भी पढ़ा है, कि ब्रह्मा ज्ञान की तलाश में लोग इधर उधर भटकते हैं, उसके लिए खोज करते हैं। और आप सब कितने परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज ब्रह्म सरोवर में ब्रह्मा कुमारी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से ज्ञान सरोवर में ज्ञान बटोरने के लिए आए हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहां आज हम इकट्ठे हुए हैं वो है हमारी वैल्यू बेस्ड जस्टिस के लिए। ये वैल्यू बेस्ड जस्टिस है क्या? हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, बहुत सारे एडवोकेट हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं। हमारे पास कोई क्लाइंट आया, हमने लिया उसका, जो भी उसका क्वेश्चन है या जो भी उसका मैटर है, हम बात करते हैं और कभी कभी झूठ सच उसको जवाब दे देते हैं। हमें पता है कि इस मैटर में कुछ होने वाला नहीं है या वो उसके अपोजिट है, लेकिन क्योंकि क्लाइंट आया है तो हम उसको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये वैल्यू नहीं है, हमें वैल्यू बेस्ड जस्टिस की बात करनी चाहिए। हमें अपने क्लाइंट को फर्स्ट स्टेज पर ही क्लियर करना चाहिए कि इस मैटर में, इस केस में आपके ये चीजें हैं, ये पोजीशन है। उसके बाद भी अगर वो एग्री करता है तो फिर हमें अपना केस आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे उसको पास करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि नारी शक्ति को कोई प्रमोट करता है। हम बहुत छोटे से, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप में लेडी एडवोकेट कितने हैं यहां पर, प्लीज हाथ खड़ा करेंगे? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप में से आफ्टर 6 o'clock या डे टाइम में भी, बट जनरली मैं बात कर रही हूं ओडर की, कितनी लेडी एडवोकेट हैं जो गट्स रखती हैं, हिम्मत रखती हैं पुलिस स्टेशन में रात को जाने की? आपको पता है अभी रिसेंटली एक नोएडा में इंसिडेंट हुआ है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी दीदी, एक इंसिडेंट हुआ है। लेडी एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए गई थी, क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गई और वहां उसको उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट उसको किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लिया गया। और अभी रिसेंटली कर्नाटका में भी एक ऐसा केस हुआ। हमारे देश में न्याय की रक्षा करने वाली भी सेफ नहीं है, मानते आप इस बात को? तो इसी के लिए हमने एक रिट लगाया है, कल ही उसमें हमने रिट लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई देखिए, लेडी के लिए है, हमारे पास एक्ट है, लेडी अगर बात आती है तो वो नाइट आर में नहीं जाएगी, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेडी एडवोकेट के लिए नहीं है। तो उसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट में हमें एक बहुत अच्छा वो मिला है, हमारी नोटिस हुआ है, जिसमें कि अगर अब के बाद से पूरे इंडिया में लेडी एडवोकेट अगर जाती हैं पुलिस स्टेशन में तो उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, उनकी कैमरा प्रोसीडिंग होगी विद ऑडियो विद रिकॉर्डिंग, तो काफी सारे इसमें हमने वो किया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। दूसरी चीज जो मैं अभी बात कर रही थी आपसे, मैंने इतना बड़ा मतलब इंडिया वर्ल्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखा जो कि नारियों को प्रमोट करे या उसको वुमेन कर रही हैं, जिसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे पास हमारी ब्रह्म कुमारी, जो ब्रह्म का सागर है, जो इतना प्रेरणा देती हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ी हूं, बट क्योंकि मैं आप सबको इसलिए बता रही हूं कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो उसके बाद अगर हमारा दूसरा मैटर आने वाला है ना, तो हमारा दिमाग उस दूसरे मैटर में चल रहा होता है, ये वाला तो हमें पता है कि अभी ये होने वाला है। तो वहां हमें कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो हमें मैंने ब्रह्म कुमारी जब मैं यहां आई ज्वाइन किया तो मुझे ये चीज पीस ऑफ माइंड यहां पर मिला, स्पिरिचुअलिटी पावर मुझे यहां पे मिली। हमें ब्रह्म कुमारी क्या देता है? क्रोध को शांति से, नफरत को प्रेम से और निराशा को आशा में बदलता है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब यहां आए हैं तो पूरे सेशंस ले, ध्यान से सुने। मुझे नहीं लगता है कि हम सारी चीजों को फॉलो कर पाते हैं, जब तक हम यहां हैं वो सोचते हैं अच्छा लग रहा है कर रहा है, लेकिन आप एक नियम लेके जाएं कि जितनी बातों को आप सुने उनमें से कम एक बात आप यहां से जाने के बाद भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें, तो आप देखिएगा आप सबकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। धन्यवाद।
आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को हमारे बीच रखा, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी हम मंच से बहुत समय से एक शांति के, आनंद के वाइब्रेशंस को अनुभव कर रहे हैं और अब हम उस पिता परमात्मा के साथ भी उस आनंद, उस शांति का अनुभव करेंगे और उस गहरी शांति का अनुभव एक सबसे अच्छी बात है, हम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके तो बताया जाता है पर आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो जुरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं, वो हमारे बीच हैं और उनसे भी हम उस वेव्स को अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ हमारी और भी दीदियां हैं जिनसे हम उस वाइब्रेशंस को अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आप बाल्यकाल में ही ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में आए और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मानवता और आध्यात्मिकता के प्रति आघात प्रेम में अपना संपूर्ण ईश्वरीय जीवन समर्पित किया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी सोनीपत रिट्रीट सेंटर की आप डायरेक्टर हैं एवं जुरिस्ट विंग पंजाब जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही साथ आप लेखिका होने के साथ ओजस्वी वक्ता और स्वयं योग की गहराई में जाकर दूसरों को भी अनुभव कराने में सक्षम हैं। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी से योग की उस गहन अनुभूति को करेंगे भी, अपने अंदर उस वाइब्रेशंस को भी अनुभव करेंगे और वातावरण में भी उस वाइब्रेशन को हम अनुभव करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित अध्यात्म से जुड़ी हुई एवं न्याय प्रभाग से जुड़ी हुई महान विभूतियां एवं सभा में उपस्थित न्याय प्रभाग से जुड़े हुए सभी महानुभाव तथा अन्य भाई बहने, हम सभी वर्तमान समय देखते हैं कि विश्व में चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत दुख, अशांति और पीड़ा का है। और ऐसे समय पर एक दुखी अशांत मनुष्य आशा भरी नजर से न्यायविदों की तरफ निहारता है कि शायद यहां से हमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि वो अदालत को न्याय का मंदिर और न्यायदाताओं को उस मंदिर के देवता समझकर उनके पास आता है। तो इसलिए न्यायविदों की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो सारे समाज को जो उनकी आशाएं हैं उनको पूरा करने वाले हैं। और उसके लिए जो ये हमारा विषय है वैल्यू बेस्ड जस्टिस, उसके लिए हमारे जीवन में वो सद्गुण, वो वैल्यूज कैसे जीवन में आए, उसके लिए हमें आध्यात्मिकता की नितांत आवश्यकता है। भले ही भौतिक जगत का कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो जीवन मूल्यों का विकास नहीं होता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी शब्द बोलते हैं तो कुछ लोग उसे धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन रिलीजन अलग चीज है और अध्यात्म अलग चीज है। धर्म के नाम पर हम बढ़ते चले गए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन अध्यात्म हमें जोड़ता है, क्योंकि अध्यात्म सब धर्मों से ऊपर है कि हम सब आत्मा हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब ही स्टडी ऑफ स्पिरिट। मैं एक आत्मा हूं, उस ईश्वर पिता की संतान हूं, और सारे जगत में जितने भी लोग हैं सबके अंदर भी एक चेतना है, एक आत्मा है। और जैसे ही उस स्पिरिट को हम पहचानते हैं तो उसके अंदर ही मूल्यों का समावेश है, शांति, प्रेम, आनंद, सद्भावना, और वो ईश्वर पिता परमात्मा सभी गुणों के सागर हैं। न्याय के अंदर हम देखते हैं कि जब मनुष्य का मन उलझा हुआ है, चंचल है, बेचैन है, दुखी और अशांत है, तो वो सही न्याय नहीं कर सकता है। एक सही न्याय के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास, अंतर आत्मा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन के माध्यम से वो आध्यात्मिक शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती हैं, जिससे सद विवेक पैदा होता है, सद बुद्धि पैदा होती है, और सब प्राणियों के प्रति एक प्रेम भाव जागृत होता है। भले ही हम अपना जो कारोबार है न्याय के हिसाब से वो करेंगे, लेकिन फिर भी मानवता के प्रति प्रेम जो कि मेडिटेशन के द्वारा पैदा होता है। और जैसे ही हम योग या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें आता है कि ये तो शायद घर बार, परिवार और जिम्मेवारियों को छोड़ करके ही हो सकता है, लेकिन नहीं। गीता में भगवान ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम्। योग तो वो विधि है जिससे हमारे कर्मों में परफेक्शन आती है। हम जिम्मेवारियों को छोड़ते नहीं, लेकिन हम जिस भी फील्ड में हैं, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई न्यायाधीश है, डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना, अपने कर्तव्य को समझ करके अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्म योगी बन करके। तो इस प्रकार से योग हमें जिम्मेवारियों से दूर नहीं ले जाता है। साथ ही साथ भगवान ने योग का जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या दी है वो है योग से जीवन में समत्व भाव आता है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख भी होगा, कभी दुख भी होगा, लेकिन एक जो योगी है, जो ईश्वर को याद करके शक्तियां प्राप्त करता है, वो उन परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होता है। तो इसलिए योग हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। मन को, स्वयं को आत्मा निश्चय करके मन को उस ईश्वर पिता के साथ जोड़ना। हम सबके अंदर एक चेतना है, जिसे कोई प्राण कहता है, कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई एनर्जी कहता है, और वो एनर्जी जब इस बॉडी से निकल जाती है तो ये बिल्कुल डेड मिट्टी के समान हो जाता है। तो अपने आप को उस आत्म निश्चय में स्थित करके अपने मन को उस परम शक्ति के साथ जोड़ना, और वो ईश्वर पिता परमात्मा, जिसे कोई ईश्वर कहता, गॉड कहता, अल्लाह कहता, लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी आत्माओं का पिता है, उसके साथ मन को कनेक्ट करना। और वो पिता परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, जो उनके अंदर है। जैसे ही हम मन को उनके साथ जोड़ते हैं तो वो शांति, प्रेम, आनंद हमारी आत्मा में भी प्रवाहित होने लगता है, और जब हमारी आत्मा के अंदर वो सुख, शांति, पवित्रता आती है तो वो हमारे कर्म और व्यवहार के द्वारा अन्य आत्माओं को भी प्राप्त होती है। साथ साथ योग के द्वारा हमारा जब मन शांत होता है, खुश होता है, पीसफुल होता है, तो हमारे निर्णय भी सही होते हैं, और एक शांत मन के कारण हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत मधुर हो जाते हैं। इसलिए योग की हमें जीवन में नितांत आवश्यकता है। और जीवन मूल्य, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जस्टिस के अंदर मूल्यों की जरूरत है, वो जीवन मूल्य प्रेम, शांति, आनंद हमारे जीवन के अंदर भरता जाएगा। और जो चीज इंसान के अंदर भरी हुई होती है, जो उसके चिंतन में होती है, वो उसके व्यवहार में अवश्य आती है, और तभी हम एक बहुत सुंदर जो वैल्यू बेस्ड जस्टिस है वो समाज के अंदर दे पाएंगे और इस समाज को सुखी और शांत बना पाएंगे। इस मेडिटेशन के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर भी सुबह का जो फुल सेशन है वो मेडिटेशन का रहेगा, और अपने अपने स्थानों पर भी आप जाकर के इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम चंद मिनट के लिए, केवल चंद मिनट के लिए अंतर की यात्रा करते हैं, स्वयं को रियलाइज करते हुए कुछ क्षण के लिए अपने मन को उस प्रभु पिता के साथ जोड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जब हम उसके बच्चे हैं तो हम कभी भी कहीं भी बैठ करके अपने उस पिता से मन को जोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं कुछ क्षण के लिए चारों तरफ से अपने मन को समेट कर, अपने सब विचारों को समेट कर चलें अपने अंदर की ओर, स्वयं से बात करें, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं केवल ये पंच भौतिक शरीर नहीं, इसके अंदर मस्तक के मध्य में एक चेतना शक्ति हूं, जागती ज्योत हूं, एक अति सूक्ष्म डिवाइन लाइट प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मैं आत्मा एक छोटा सा सफेद सितारा अपने मूल स्वरूप में शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र आत्मा हूं। मैं प्रकाश पुंज आत्मा, मेरी ही चेतना इस पूरे शरीर में व्याप्त है, जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, हाथों से कर्म करती है, इन सब का मालिक मैं चेतन आत्मा मस्तक के मध्य में एक जागती ज्योत हूं। कुछ क्षण के लिए मैं ज्योति पुंज आत्मा इस आवाज की दुनिया से दूर अपने असली घर परम धाम शांति धाम इस भौतिक जगत से बहुत दूर मैं दिव्य आत्मा अपने असली घर में हूं, एक चमकती हुई चेतना के रूप में, एक शक्ति के रूप में, मैं ज्योति पुंज आत्मा ईश्वर पिता की संतान हूं। मेरे पिता भी महाज्योति पुंज सर्वशक्तिवान मैं आत्मा ईश्वर पिता के समीप उनके सानिध्य में उनकी छत्र छाया में हूं। महसूस करें मेरे सच्चे पिता शांति के सागर हैं, उनकी असीम शांति की तरंगे उतर उतर कर मुझ आत्मा पर भी बरस रही हैं। ईश्वर पिता की शांति मुझ में समा रही है। शांति के सागर पिता के समीप मेरा चित्त बिल्कुल शांत है। इसी शांति की स्थिति में सच्चा सुख है। इसी शांत स्थिति में सच्चा आनंद है। मेरे ईश्वर पिता सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे भी शक्ति से भरपूर कर रही हैं। मैं शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस शांति और शक्ति को स्वयं में समेट कर धीरे धीरे मैं ज्योति पुंज आत्मा फिर से इस भौतिक जगत की ओर अपने पंच भौतिक शरीर में मस्तक के मध्य में शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। इसी शांति और शक्ति के साथ मुझे इस सृष्टि नाटक में अपना हर कर्म करते हुए शांति और प्रेम के साथ करना है। सबको शांति और सुख बांटना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दीदी का। आपने बहुत ही सहज और सरलता से अपने स्वरूप का और परमात्मा के साथ मन की तार जोड़ के उनके प्यार का अनुभव कराया। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के
एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तथा एजुकेशन राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही समाज को श्रेष्ठ बनाने के प्रति आपके अथक और निस्वार्थ योगदान के लिए रांची यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि से भी सम्मानित किया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से 15 विश्वविद्यालयों में आध्यात्मिक विषयों को आरंभ कराने का श्रेष्ठ भी आपको जाता है। आपके मन में सदा ये शुभ भावना रहती है कि परमात्म ज्ञान परमात्म घर के अनुभवों का सभी लाभ उठाएं, कोई रह ना जाए। इसीलिए हर साल ग्लोबल सबमिट का कार्यक्रम भी आबू में नीचे शांति वन में किया जाता है, उसका श्रेय भी आपको जाता है। तो बारंबार आपका स्वागत करते हैं और आपके आशीर्वचन आपके शब्दों को जीवन में उतारेंगे, ये भी संकल्प करेंगे। डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं, परमात्मा प्रिय आत्माएं, सत्य प्रिय आत्मा, सेवा प्रिय आत्माओं को प्रभु के घर से सूक्ष्म वतन से परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साथी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा लाइट एंड माइट का वर्षा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। आज इस विशेष जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन परम आदरणीय पुष्पा दीदी लॉ एंड लव का बैलेंस एंड ब्लिसफुल जीवन जीने वाले हमारे परम आदरणीय जस्टिस राठी जी स्नेह और पवित्रता का शक्ति द्वारा न्याय की रथ को आगे ले जाने वाले आदरणीय भ्राता जी और साथ साथ में अनेक पूर्व न्यायाधीश इधर नायक साहब है और सारे में चश्मा न और नटमल भाई जी, विद्या बहन जी, जस्टिस के नायक साहब, पीताम्बर आचार्य साहब, सीवाल बहन, डॉक्टर गीता बहन, लक्ष्मी बहन और अन्य भाई बहनों देश के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी, एमिनेंट एडवोकेट्स, लीगल स्कॉलर्स, लॉ सेक्रेटरीज, रेस्पेक्टेड गेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, ओम शांति। It is my privilege to warmly welcome all of you to the National Jurist Conference on the profound theme, Value-Based Justice, the Soul of Law, being held from 28th May to 1st June 26 at the Sarin campus of the Academy for a Better World, Gyan Sarovar, Mount Abu. This conference has been organized by the Brahma Kumaris in collaboration with the Raj Yoga Education and Research Foundation and its jurist wing, with the noble aim of bringing together the wisdom of spirituality and the responsibility of law. Today, humanity stands at a decisive turning point despite extraordinary advancements in science, governance, and legal systems. The world continues to focus violence, corruption, mistrust, emotional instability and moral decline. Courts are burdened with increasing litigation. Societies are becoming fragmented and human responsibilities are weakening. In such a time, the role of the judiciary becomes far greater than the interpretation of law alone. It becomes a responsibility toward the moral and spiritual direction of the society. Law is not merely a system to punish wrongdoings. The true purpose of law is to protocol human dignity, preserve harmony, and uphold justice with wisdom, balance, and compassion. When values disappear from human life, even the strongest system begins to weaken. Our Constitution stands firmly upon our four pillars: the legislature, the judiciary, the bureaucracy, and the media. Each pillar carries an essential responsibility in maintaining the democratic fabric of the nation. Among them, the judiciary occupies an unequivocally sacred position as the guardian of justice, constitutional values, and citizens' rights. It is true, strength lies in independence, impartiality, and courage. The judiciary must remain free from pressures, politics, prejudice, and the influence of any other pillar. Only then can democracy remain healthy and public faith remain unshaken. At this important moment, with all our experience and dedication towards society, I would like to say that the Supreme Being has established this divine institution with the purpose of re-establishing a golden age world, a world governed by truth, justice, peace, harmony, love, and integrity. In Indian wisdom, it is said, Yatha Raja, Tatha Praja. Or the leadership, so becomes the society. When those who guide society live with elevated values, the nation naturally becomes towards righteousness and harmony. The entire Brahma Kumaris organization advocates the practice of a value-based life and freedom from vices such as anger, greed, ego, jealousy, hatred, and corruption. Where are the root causes of behind the downfall of society? Which are the root causes for the causes behind the downfall of society? Humanity today is not suffering due to lack of laws. It is suffering due to the loss of character and self-control. According to spiritual understanding, this is the most significant period in the 5,000 years of cycle of humanity history, the confluence age, the sacred transition between the old world and a new elevated world order. This is the time for inner awakening and self-transformation. Lasting social transformation can never be achieved merely through external reforms. It begins within the human mind and consciousness. Respected members of the legal fraternity, a judge may possess great legal knowledge, but without inner stability, emotional balance, and clarity of consciousness, the burden of responsibility becomes extremely heavy. Advocates and legal professionals constantly face pressure, conflict, competition, deadlines, and emotionally tense situation. Many silently carry stress and mental exhaustion. This is why spirituality has become essential in professional life. Spirituality does not mean withdrawal from responsibility. It means bringing higher awareness, self-discipline, and purity into action. Rajaga meditation teaches it's connected with the original identity as peaceful and lawful being. When the mind becomes connected with this supreme source, clarity, stability, and strength naturally emerges. One of the important themes of this conference his relation with and communication with the Supreme. In Raja Yoga, God is understood as the Supreme Soul, the ocean of peace, truth, wisdom and justice. Through regular communication with the Supreme, a person develops this inner strength to remain detached yet compensate, compassionate, firm yet humble and disciplined, peaceful. The justice requires not only sharp intellect but also purity of intention. A calm mind sees more clarity. A peaceful intellect decides more accurately. A spirituality empowered heart remains free from ego and prejudice. Another important theme of the conference is inner stability in legal life through spirituality. I once again wish you all, may the Divine Father and Mother, Brahma Baba, help you, empower you, enlighten you, and enrich you. One occasion I wanted to tell you, once Justice Ranganath Mishraji was here, about 2,000 professors and more than 50 vice-chancellors were here. At that time, what he said, we have a national universities, regional universities, professional universities, language universities, music universities, so on and so forth. But there is only one spiritual university that is here, that is here, that is here. Another time, I just would like to say, Justice Krishnayar was here. He was more devoted to the Brahma Kumaris organization and he was addressing one of the Golden Jubilee celebration of this institution. He was telling, we have a national Prime Minister of the country, but we have another permanent Prime Minister of peace, that is Dadi Prakash Maniji. One, how the law interprets, law moves, law twisted, law applies. One small story, my experience. The Gyan Sarovar in which we are all sitting, we had applied for approval of the permission of the government of Rajasthan. The law secretary took almost 1 year to approve the plan. But in the meantime, the present government at that time, the BJP government, was dismissed due to the breakdown or destruction of the Babri Masjid. Then the governor rule became the order of the day. We had an opportunity to meet the governor and requested him. Then he said, you come tomorrow. I will tell you how to do. Then we went next day. We were sitting in the presence of the governor of Rajasthan. He called the secretary. He told the secretary, Mrs., I have accepted the invitation of Dadiji and I have to go to Mount Abu. I will be there for 3 days. I am going to lay the foundation stone for this campus, would be campus. In 15 days, the drawings were approved and came back to here. Why I am telling you, the power transforms. No new law was enacted. No person was interfered. No influence was made. But a power makes transformation in their consciousness. And ultimately, the plan was approved. And ultimately, this was built by 1 rupee. That means there are 3 lakhs Brahma Kumars and Kumaris were there at that time. Our Dadi requested how to make this campus. And one of our senior brothers said, Didi, aap ek kaam karo, एक लेटर लिखो सबको एक एक रुपए एक एक दिन में इस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डाले बाबा की सेवार्थ उन्होंने डाला विदिन टू इयर्स विदाउट बार्गेनिंग विदाउट बेगिंग विदाउट आस्किंग मल्टी मिलियनियर्स और गवर्नमेंट दिस कैंपस वॉज बिल्ट टूडे यू आर ऑल सीइंग द मॉन्यूमेंट ऑफ दैट डेडिकेशन सो ए लिटिल हेल्प लिटिल कोऑपरेशन मेक्स ए वर्ल्ड बेटर सो मे यू बी हैप्पी बी होली बी योगी बी गुड डू गुड and be remember Shri Baba and Brahma Baba, the father and mother. Thank you, Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का आपने ब्रह्मा बाबा दादी प्रकाशमणि जी और इस यज्ञ की हिस्ट्री याद दिलाई कि कैसे कैसे ये कॉम्प्लेक्स बने जहां हम बैठे हैं आज और आप सामने भी देख रहे हैं ओम शांति भवन कि इन सबका निर्माण कैसे हुआ आपके लिए यही कहेंगे कि संसार के जगमगाते सितारे आभू के नभ में छा जाते हैं संसार के जगमगाते सितारे आभू के नभ में छा जाते हैं जब आप ईश्वरीय शिक्षा और अनुभव की मशाल जलाते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस के साथ जो एमओयू का एक समझौता हुआ उसमें एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि उनको भी आध्यात्मिकता के ऊपर क्लासें मिलनी शुरू हो जाती है तो हम एक बार फिर से भाई साहब का करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी जी जो जुरिस्ट विंग के चेयर वाइस चेयरपर्सन हैं न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ आप पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जुरिस्ट विंग के माध्यम से मूल्य आधारित न्याय के संदेश को देश भर के वकीलों न्यायाधीशों एवं कानून के छात्रों तक पहुंचाने में सक्रिय हैं और आपके अनुभव हम आपके ही शब्दों के द्वारा सुनेंगे आदरणीय मिस्टर जस्टिस बी डी राठी जी
थैंक यू निशा बहन ओम शांति मीठे प्यारे पिता परमात्मा जो हम सबका बाबा है उसके घर में विराजमान आप सभी आत्मीयजनों का और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से जुरिस्ट विंग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं वंदन करता हूं आज का यह सत्र स्वागत सत्र है ऑफिशियली विषय पर हम कल से इनॉग्रल सेशन शुरू करेंगे और समापन सत्र भी होगा और इस बीच कई छोटी बड़ी आध्यात्मिक सीख की यात्राएं करेंगे आपके मॉर्निंग सेशंस भी रखे हैं शिविर भी है और बहुत से स्पीकर्स आपके साथ वर्कशॉप में भी वार्तालाप करेंगे और मैं समझता हूं कि परमात्मा ने कोई विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी जिम्मेदारी निभाने का गुण आप में देखा है और इसी कारण आपका चयन हुआ है यहां तक आप पधारे ये बहुत भाग्य की बात है ये तपोभूमि अरावली शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है यहां बड़े बड़े मनस्वी मुनि ऋषि और वे महान आत्माएं जो संसार में चक्रवर्ती सम्राट बनती है वर्ल्ड व्हील ड्रामा में वे सभी इस खास समय पर जो संगम युग कहलाता है इसके बारे में भी आप जानेंगे यहां वे आत्माएं अभी निरंतर तपस्यारत हैं आप वे भाग्यशाली आत्माएं हैं जो यदि दैनिक रूटीन दिनचर्या जो यहां बहनें बताएंगी उस अनुसार यदि अपनी लाइफ स्टाइल यहां रखी तो उनके दर्शन भी कर पाएंगे। कैसे योग किया जाता है, साधना क्या होती है, चेहरे पर तेज और ओजस्विता क्या होती है, मन के पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं, पुण्य कैसे जागृत होता है, वो सब आर्ट आप भली भांति सीख सकते हैं। मेरा आप लोगों सभी से निवेदन है कि यहां पधारने के लिए केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ उठाएं यह उद्देश्य न रखें, बल्कि यह उद्देश्य रखें कि जिंदगी का सबसे अहम लहमा या सबसे सुखद दिन बड़े भाग्य से आपको मिले हैं, परमात्मा ने आपका चयन किया है, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का, मिनट का भरपूर सदुपयोग करें। यहां जो बातें बताई जाएगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। हम सारी ज्ञान की बातें दुनियावी तरीके से करते हैं, किंतु हमारा दृष्टिकोण कैसे बदले, वो कैसे हो सकता है, वो यहां सिखाया जाता है। पूरे देश से, भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे बीच डेलीगेट्स भी हैं, आदरणीय स्पीकर्स भी आ रहे हैं, आ चुके हैं, डेलीगेट्स भी कल पहुंचेंगे। इस समय का भरपूर सदुपयोग करिए। यदि यह 3-4-5 दिन यदि आपने पूरी तरह डूबकर आध्यात्म को सीखा तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इतना भरपूर होकर जाएंगे कि आपके मन में यह थॉट अवश्य आएगा कि काश कभी पहले यहां आने को मिलता। और जब आप अपने फील्ड में पहुंचेंगे तो दूसरों को भी लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह बनकर उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, और उनसे जो दुआएं आपको मिलेगी वो आपको और आपके परिवार को बहुत ऊंचा और आगे बढ़ाएगी। इन दिनों में ये जो सब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, इन सारी व्यथाओं को ही ध्यान में रखकर रखा है। जो भाई साहब श्री सेवाल साहब जो अभी कह रहे थे, नीचे से लेके ऊपर तक जो उल्टा पुल्टा होता रहता है, ये व्यथा आज की नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, आपने नाम सुना होगा इमिनेंट जुरिस्ट नानी पालकीवाला साहब का, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वैसे तो कई पुस्तकें लिखी है पर एक विशेष वी द नेशन, और उसमें ये बात कोट की गई है 1947 में। और उस समय के पहले तत्कालीन एडवोकेट जनरल थे मिस्टर नौसरवाल इंजीनियर साहब, तो उनसे पूछा गया कि देश की न्याय व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने भाई साहब की ही वही व्यथा उस समय व्यक्त की थी कि मुझे आज भी काजी न्याय पर व्यवस्था है, काजी न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, जो फर्स्ट एंड लास्ट कोर्ट होती है, जिसकी कोई अपील की आवश्यकता नहीं होती, जहां सब संतुष्ट होकर जाते हैं, जो हारा वो भी संतुष्ट होता है। और वही व्यथा आज भी कायम है। इसी व्यथा को लेकर ये विषय हमारे सामने रखा गया है जुरिस्ट्रिंग के द्वारा, जिस पर हम सबको मिलकर चिंतन करना है, मनन करना है, हमारे स्पीकर्स के थॉट्स को सुनना है, और फिर एक ऐसा निचोड़ लेकर यहां से जाना है जो परमात्मा हम में लायबिलिटी निभाने की एक शक्ति देख रहे हैं, उसको सही माने में समाज में जाकर सिद्ध करना है। बहन, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर गीता बहन ने जो व्यथा रखी पुलिस के हरासमेंट की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। यदि कोई गलती से भी बाय मिस्टेक पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो महीने दो महीने चार महीने तो उसका, जिसने कोई गुनाह नहीं करा, कृष्ण जन्म स्थली में रहना ही है उसको, जिसने कोई गुनाह नहीं करा। तो ये न केवल पुलिस की जाति पर प्रश्न चिन्ह है बल्कि न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह है। और उसी सब बातों को देखकर ही ये विषय रखा गया है जिस पर हम कल से विधिवत इस पर चिंतन करेंगे। मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि श्रीमद् भगवद गीता का वह विशुद्ध ज्ञान जो हमने किताबों में पढ़ा पर कैसे प्रैक्टिकल धारण होता है जीवन में और उससे कैसे पावर्स और क्वालिटीज और वैल्यूज हम में आ सकती है, उसका क्या प्रोसीजर है, साधना क्या होती है, पुरुषार्थ क्या होता है, वो यहाँ सिखाया जाएगा। तो उसको आप बहुत गंभीरता से उस पर ध्यान दें। यहाँ की जो प्रसादी है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, महाप्रसाद जो स्वयं परमात्मा पहले टेस्ट करते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचता है, उसका आप रसास्वादन कीजिए और उससे भी शक्ति प्राप्त करिए। मेरा आपसे यह भी अनुग्रह है कि आपके ठहरने में, आपकी भोजन व्यवस्था में या किसी प्रकार की भी कोई अव्यवस्था हो तो कृपया आप हमारी बहनों को तुरंत इन्फॉर्म करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम एडवांस में आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह अनूठा ज्ञान एक डेविड हेनरी थोरो, अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक दिन श्रीमद् भगवद गीता को भारतवर्ष की इस भूमि पर सिर पर रखकर नाच रहे थे तो लोगों ने पूछा कि इस किताब में ऐसा क्या मिला आपको कि जो इतना खुश है। तो उन्होंने कहा कि यह वह श्रीमद् भगवद गीता है जिसमें जिंदगी की किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस श्रीमद् भगवद गीता का दिया हुआ सॉल्यूशन है। और ये मुझे अब प्राप्त हुआ भारतवर्ष की भूमि पर, तब मैं इतना खुश हूं। श्रीमद् भगवद गीता का वह अनूठा ज्ञान जो आप तक हमारी बहनें पहुंचाने की कोशिश करेंगी भरपूर। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और उन्होंने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे थी और सारे धर्मग्रंथ ऊपर रखे हुए थे एक के बाद एक के बाद एक, और किसी ने टॉन्टिंग के रूप में उनसे कहा कि जिस श्रीमद् भगवद गीता की आप बात करते हैं उसकी वैल्यू देखिए, वो तो सबसे नीचे रखी हुई है। स्वामी जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, यह तो आधार स्तंभ है। उन्होंने धीरे से गीता खसकाई और सारे धर्म ग्रंथ गिर पड़े। तो वो श्रीमद् भगवद गीता का यह अनूठा ज्ञान बहने आप तक पहुंचाएंगी। मेरी पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि जो चार पांच दिन ईश्वर ने आपको यहां आने के दिए हैं उसका भरपूर लाभ उठाइए और बहुत गंभीरता से उठाइए। आपको लगेगा कि आपने वो प्राप्तियां की है जो जिंदगी में कहीं भी नहीं मिल सकती और ना मिलेगी। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि जब आप यहां से हो जाएं तो इतना भरपूर होकर जाएं, इतना साहस, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आप में आए कि दुनिया को आप लाइट और माइट तो दे ही दें, साथ में फक्र से ये कहें कि हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनूर मालूम है, जहां से गुजरेंगे रास्ता बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन सभी अतिथियों का। ये मानकर चले मैं सबका व्यक्तिगत रूप से नाम ले रहा हूं, बहुत आभारी हूं मैं। हमारी रजिस्ट्रिंग आप सबकी आभारी है, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीडी राठी जी का। अभी धन्यवाद तो अभी 3 दिन और हैं और अपने घर में धन्यवाद तो किया नहीं जाता, स्वागत किया जाता है। और 3 दिन आप आएंगे लेकिन हमारे मंच पे उपस्थित हैं जिनके वाइब्रेशन आप बहुत समय से ले भी रहे हैं और अपने अंदर उसको महसूस भी कर रहे हैं, और 3 दिन में आप यही वाइब्रेशन बारंबार चलते फिरते भोजन करते हर जगह इस चीज को फील करेंगे जब भी किसी से मिलेंगे और हॉल में जब आएंगे। और कल तो हमारे बीच आदरणीय पुष्पा दीदी जी हैं, हम कल उनको भी सुनेंगे। उनके लिए हम 2 ही शब्द कहेंगे कि पुष्पा नाम लेकर ईश्वर ने फूल भेजा है, धरती पर स्वर्ग का कोई नूर भेजा है, कर्म से पवित्र वचन से कोमल आपके रूप में विधाता ने आपकी वाणी में सहज और सरलता से कमल पुष्प जीवन बनाने का रहस्य भेजा है। और कल हम दीदी जी को सुनेंगे और हमारे बीच लता दीदी जी भी थे उनको भी सुनेंगे। अभी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।